आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। फेडरल वृद्ध देखभाल मंत्री का कहना है कि सरकार रेसिडेंशियल एज्ड केयर स्थानों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ये घोषणा उस समय आई है जब इस क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू होने वाले हैं। नया एज्ड केयर कानून जुलाई से लागू होना था, लेकिन अब इसे नवंबर तक टाल दिया गया है ताकि सेवा प्रदाताओं को बदलावों के अनुकूल होने का समय मिल सके। स्काई न्यूज से बातचीत में फेडरल मंत्री सैम रे ने कहा कि सरकार जल्द ही एज्ड केयर सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए नई फंडिंग की घोषणा करेगी। इससे पहले इस सप्ताह सरकार ने 20,000 अतिरिक्त होम केयर पैकेजों की त्वरित फंडिंग की घोषणा की थी ताकि घर पर रहने वाले बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सहायता मिल सके। ये कदम विपक्ष और क्रॉस बेंच के दबाव के बाद उठाया गया था। वहीं सिडनी के डीवाई बीच के पास एक शार्क हमले में एक सर्फर की मृत्यु हो गई है। इस बीच स्थानीय लोगों की तेज प्रतिक्रिया की सराहना की जा रही है। नॉर्दर्न बीचेस काउंसिल ने बयान जारी कर उन सभी का धन्यवाद दिया है जो शनिवार को 57 वर्षीय व्यक्ति को किनारे तक लाने और प्राथमिक उपचार देने में मददगार रहे। इनमें आम लोग, सर्फ लाइफ सेविंग स्वयं सेवक, पुलिस और पैरामेडिक्स शामिल हैं। घटना के चश्मदीदों के अनुसार हमला तट से 100 मीटर दूर हुआ और कम से कम 2 सर्फर्स ने हमले के बाद घायल व्यक्ति को पानी से बाहर लाने में सहायता दी। दूसरी ओर एक साल पहले सुधारों का वादा करने के बावजूद न्यू साउथ वेल्स ने एक जेल गार्ड के यौन शोषण मामले की जांच से जुड़ी सिफारिशों में केवल 1/3 को ही लागू किया है। ये विशेष आयोग उस समय शुरू किया गया था जब पूर्व कारागार अधिकारी वेन एस्टल को सिडनी के पश्चिम में डिल्विनिया करेक्शनल सेंटर में 9 महिलाओं के शोषण के मामले में 23 साल की सजा सुनाई गई थी। सरकार ने सभी 31 सिफारिशों को स्वीकार करने की बात कही थी, लेकिन पहले सालगिरह तक केवल 9 ही पूरी तरह लागू हो पाई हैं। इनमें वे कानून शामिल हैं जो स्टाफ और कैदियों के बीच सभी यौन संबंधों को अवैध घोषित करता है। सुधार मंत्री एनालेक चांटीवोंग का कहना है कि सरकार के पास अभी और काम बाकी है ताकि ऐसे निंदनीय और अक्षम्य अपराध फिर से ना हो सके। सहायता के लिए श्रोता 1800 रिस्पेक्ट यानी 1-800-737-732 और नेशनल सेक्सुअल अब्यूज एंड रिड्रेस सपोर्ट सर्विस 1-800-211-028 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की फेडरल सरकार के फूड सिक्योरिटी रिजिलियंस पैकेज के तहत दूरदराज के इंडिजिनस समुदायों में स्थित अतिरिक्त स्टोरों को लगभग $1 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 5, नॉर्दर्न टेरिटरी के 1 और साउथ ऑस्ट्रेलिया के 1 समुदाय को ये राशि दूसरे चरण की फंडिंग के तहत दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन इलाकों में खाद्य सामग्री की लागत को कम करना है जो अत्यधिक मौसम और सीमित बुनियादी ढांचे से प्रभावित है। फंडिंग से कोल्ड स्टोरेज और बिजली आपूर्ति ढांचे को उन्नत किया जाएगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रशिया के खिलाफ युद्ध में उनकी सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से करीब 60% देश में ही बनाए जा रहे हैं। व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने दैनिक वीडियो संबोधन में ये जानकारी दी। इससे पहले जुलाई में उन्होंने नई सरकार से घरेलू हथियार उत्पादन को 50% से अधिक करने का आह्वान किया था। यूक्रेन ने हाल के महीनों में ड्रोन निर्माण और हवाई सुरक्षा प्रणाली पर जोर दिया है ताकि रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब दिया जा सके। अधिकारियों ने यह भी कहा कि रूसी हवाई हमलों से निपटने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन एक कारगर और किफायती साधन साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर लंदन में पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पैलेस्टाइन एक्शन के समर्थन पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने इस संगठन को आतंकी समूह करार दिया है। प्रदर्शनकारी शनिवार को लंदन के सेंट्रल इलाके में संसद के पास इस प्रतिबंध के खिलाफ जुटे थे। ये संगठन ब्रिटेन सरकार पर आरोप लगाता है कि वे गाजा पट्टी में कथित रूप से इसराइल द्वारा किए जा रहे युद्ध अपराधों में सहभागी है, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि उसने जुलाई में आतंकवाद रोधी कानून के तहत पैलेस्टाइन एक्शन पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि इसके कुछ सदस्य रॉयल एयरफोर्स बेस में घुस गए थे और सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचाया था। और अब अंत में खबरें भारत से। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में नुकसान की खबरें हैं, जबकि गुजरात में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा कट गया। चमोली में लगातार हो रहे भूस्खलन से सड़क धंस गई और मकानों में दरारें पड़ गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से नौगांव क्षेत्र के कई घर क्षतिग्रस्त हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव के आदेश दिए हैं। राजस्थान के जयपुर में बारिश से एक मकान ढहने से पिता पुत्री की मृत्यु हो गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे 70 से अधिक परिवारों को अस्थायी टेंट में रहना पड़ रहा है। इस बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के चलते लगातार 5वें दिन भी बंद है। सड़क से मलबा हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि गुजरात में 7 सितम्बर को अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है। इसी के साथ 7 सितंबर 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। सुनते रहिए SBS हिंदी को।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।